नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में होगा मतदान। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। चुनाव घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू। भाजपा, जदयू, राजद और कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का स्वागत किया। और विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी। पहले चरण में 121 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए मतदान होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गजट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21, विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर, और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि राज्य में 7,42,00,000 मतदाताओं के लिए 90,712 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे।
तो कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ है। सीनियर सिटीजन्स लगभग 4,00,000 हैं। 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाता लगभग 14,000 हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स लगभग 14,00,000 हैं।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आयोग बिहार में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पहली बार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा, जो आयोग की आंख और कान के रूप में काम करेगा। श्री कुमार ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग कराई जाएगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया पर पूरी निगरानी रखी जा सके।
243 असेंबलीज में 243 जनरल ऑब्जर्वर्स होंगे, जो कि विभिन्न राज्यों से वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नामित किए गए हैं, जो कि बिहार के रहने वाले नहीं। इसी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो पुलिस ऑब्जर्वर्स हैं, वो हर जिले में एक होंगे, और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को हम लोगों ने, चुनाव आयोग ने कुछ असेंबलीज को मिला के नामित किया है। इन ऑब्जर्वर्स के फोन नंबर भी और असेंबली किस असेंबली से है, वो आपको ECI नेट पर भी मिल जाएंगे और वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, जिससे कि अगर कोई भी ऐसी बात है या शिकायत है तो आप इन ऑब्जर्वर्स को बतला सकते हैं।
श्री कुमार ने कहा कि जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की हिंसा कतई बर्दाश्त न की जाए। उन्होंने बताया कि राज्य में पर्याप्त केंद्रीय पुलिस बल तैनात किए जाएंगे और विभिन्न निरीक्षण बिंदुओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, ताकि नशीले पदार्थों, नकदी और शराब की अवैध आवाजाही पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अगर कोई फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन होती है, खास तौर से सोशल मीडिया या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर, तो उस मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर किया जाएगा और स्ट्रिक्ट विजिल रखी जाएगी सारे चेक पॉइंट्स पर, जिससे कि ड्रग्स, लिकर और कैश का इलीगल ट्रांजैक्शन न हो पाए।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि हरेक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की सुविधा की हर जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
हर मतदान केंद्र पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज प्रदान की जाएंगी, जिसमें कि पोल वॉलंटियर्स होंगे, हेल्प डेस्क होंगी, रैंप होगा, टॉयलेट्स होंगे, ड्रिंकिंग वाटर, साइनेजेस, लाइट की सही व्यवस्था और वोटर फैसिलिटेशन सेंटर।
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि बिहार में सभी पक्षों के सहयोग से चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होंगे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़ कर मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की।
मान लीजिए कि बिहार में बड़े शांतिपूर्वक बहुत हमारा देश सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बिल्कुल शांति के साथ चुनाव संपन्न होंगे, लोकतांत्रिक तरीके से होंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा का विभिन्न राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पार्टी और एनडीए चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए को चुनाव में भारी बहुमत मिलने जा रहा है।
जनता जितना चाहती थी उससे ज्यादा दोगुना जो है सरकार ने क्रियान्वित करने का काम किया, इसीलिए विपक्ष अब विकास पर कोई बात ही नहीं कर। चुनाव विकास के लिए होता है, बिहार नए बिहार विकसित बिहार के सपना को साकार करने के लिए होता है, और ये काम एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही होगा।
राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की घोषणा का वे स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है।
बिहार के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, अब बिहार को मुख्यमंत्री गिरगिराने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए, जो बिहार के अधिकार हक और बिहार के लोगों के साथ इंसाफ कर सके, ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए। और इस बार सब लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बने, और महागठबंधन की सरकार बनेगी, और जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई बिहार में ऐसा घर नहीं होगा जहां बेरोजगार हमारे भाई बहने रहेंगे।
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि महागठबंधन चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है।
इस बार हमारा बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से बातचीत हो रही है, और हम लोग क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे ध्यान देंगे। जो जिसकी मजबूत सीट है वो अलायंस पार्टी का जो पार्टी है उसका कैंडिडेट वहाँ पे चुनाव लड़े, इस पर पूरा हम लोगों ने फोकस किया हुआ है। तो लोग भी बहुत उम्मीद से कांग्रेस को भी देख रहे हैं, महागठबंधन को देख रहे हैं।
जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी के सभी उम्मीदवार मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। श्री किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। बुधवार को उनकी पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा करेगी।
चुनाव का वो तो होना ही है, और हम अपने जनशक्ति जनता दल की तरफ से तो हम लोग फेस करेंगे, इसको लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। चुनाव जो है वो उम्मीदवार परसों बता दिया जाएगा आप लोगों को, परसों हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें।
आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने बेगूसराय, कुशेश्वरस्थान, किशनगंज, फुलवारी शरीफ और बेनीपट्टी समेत 11 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन तक की यात्रा की। लगभग 3.6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर के पहले चरण का नाम प्रायोरिटी कॉरिडोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में इस मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि मेट्रो सेवाएं अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन तक संचालित होंगी।
बिहार की पहली मेट्रो रेल सेवा की पटना में शुरुआत होते ही राजधानी पटना वासियों के लिए इंतजार के पल आज समाप्त हो गए। पटना मेट्रो रेल सेवा के तहत आज पहली ट्रेन प्रायोरिटी कॉरिडोर पर अंतर्राज्यीय बस अड्डा से भूतनाथ स्टेशन के बीच एलिवेटेड हिस्से पर चलाई गई। अन्य स्टेशनों के बीच ट्रेन की सेवा का विस्तार आगे के चरणों में होगा, जिसका काम तेजी से चल रहा है। आज शुरू किया गया यह कॉरिडोर 3.5 किलोमीटर लंबा है, जिसका बाद में विस्तार किया जाएगा। आम लोग रेल सेवा का आनंद कल से उठा सकेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 21 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रूपए अंतरित किए। मुख्यमंत्री ने महिला लाभार्थियों के खातों में कुल 2,100 करोड़ रूपए अंतरित किए। अब तक इस योजना के अंतर्गत 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में राशि भेजी जा चुकी है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के बाद प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। सुपौल, सहरसा, किशनगंज और सीतामढ़ी समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 4 और एसडीआरएफ की 22 टीमों को तैनात किया गया है। इधर हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि कोसी नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के बाद जिले के 6 प्रखंड बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं।
कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के बाद इसकी सहायक नदियों तिलियुगा और बिहुल के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। बाढ़ का पानी सुपौल सदर, बसंतपुर, निर्मली, सरायगढ़, भपटियाही, किशनपुर और मरौना प्रखंड के 1,000 से अधिक घरों में प्रवेश कर गया है। जिलाधिकारी सावन कुमार ने बताया कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालकर ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ प्रभावितों के लिए कई जगहों पर सामुदायिक रसोई घर संचालित किए जा रहे हैं। इधर भीमनगर कोसी बराज पर पानी के दबाव में कमी आई है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी।
सहरसा, मधेपुरा, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले के भी कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि अररिया से होकर गुजरने वाली परमान नदी का बांध क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे सैकड़ों घर जलमग्न हो गए हैं। जोगबनी रेल लाइन पर बाढ़ का पानी फैल जाने से रेल परिचालन बाधित हुआ है। किशनगंज और कटिहार जिले में भी कोसी और महानंदा नदी का पानी कई निचले इलाकों में फैल गया है। दूसरी तरफ सीतामढ़ी और शिवहर जिले में बागमती नदी का पानी कई निचले इलाकों में फैल रहा है। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले के कई हिस्सों में भी बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कमजोर पड़ने से राज्य में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भागों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में होगा मतदान। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। चुनाव घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू। भाजपा, जदयू, राजद और कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का स्वागत किया। और विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।